पिछले संडे से मैंने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। हम जो दुआए रबानी है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, हम उस पे गौर कर रहे हैं। और ये दुआए रबानी का जो मतन है, ये मत्ती की इंजील उसका छठा बाब और उसकी नामी आयत में है। शुरू होता है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पिछले हफ्ते हमने इस पे गौर किया था। आज हम अगले हिस्से, पिछले हफ्ते हमने आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है इस पर गौर किया था, और इस हफ्ते हम गौर करेंगे तेरा नाम पाक माना जाए। और मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि ये जो दुआ है इसके तीन हिस्से हैं। पहली को हम तमहीद, और दूसरे में हम ख्वाहिशात का इजहार है, और तीसरा हिस्सा जो है उसमें रिक्वेस्ट है, दरखास्तें हैं। आज ये जिस पे हम गौर कर रहे हैं, ये भी एक ख्वाहिश है, तेरा नाम पाक माना जाए। मेरे जो नाम जो होता है वो किसी भी शख्स का जो होता है, उसकी शख्सियत का जो होता है, वो आईना होता है। और कोई भी शख्स जो है वो अपने नाम के वसीला से पहचाना जाता है। और बाइबल मुकद्दस में जो हमें नाम मिलते हैं वो किसी ना किसी हवाले से उनका बहुत मफहूम होता था। जैसे कि खुदामु यीशु मसीह का नाम, जो कि फरिश्ता ने उनके पेट में पड़ने से पहले ही उनकी माँ को बता दिया था, माँ मरियम को, कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसी तरह से और भी जो नाम हैं उनका कोई ना कोई महफूम निकलता है, जैसे मूसा का मतलब है पानी से निकाला हुआ। और बाज़कात लोग जो थे या खुदामन जो था वो अपने बंदों का नाम जो था वो चेंज भी कर देता था, जैसे यकूब का नाम उसने इस्राएल रखा। इसी तरह से और भी बहुत सारी हमें मसाले मिलती हैं जहां पे खुदावन ने लोगों के नाम को जो था वो चेंज कर दिया किसी खास मकसद के लिए। अब खुदावन के जो हैं वो बहुत सारे अलकाब हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं तो उसमें हमें, जब मूसा की हमें मिसाल मिलती है कि जब मूसा जो था वो झाड़ी को देखता है कि वो जल रही है और उसके वो करीब जाता है, तो खुदावंद उसे कहता है कि मूसा तो अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक है। और उसके बाद खुदावंद उसको हुक्म देता है कि मैं तुझे कहता हूं कि तू मेरे लोगों के पास जा और उनको फराउन की गुलामी से छुड़ा। तो वो उसे कहता है, मूसा खुदावंद को कहता है कि मैं जब उनके पास जाऊंगा तो मैं उनको क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है। तो खुदावंद اسے کہتے ہیں کہ میں جو ہوں سو ہوں. تو بائبل مقدس میں خداون کا جو نام ہے وہ یہوہ جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی ہمیں یہ نام ملتا ہے. اور پھر ابراہیم کے وسیلہ سے ہمیں یہ نام ملتا ہے یہوہ یری. یہوہ یری کا مطلب ہے جو مہیا کرتا ہے. اور پھر یہوہ کنوم جو ہے اس کا مطلب ہے, یہوہ سلوم جو ہے اس کا مطلب ہے خدا ہماری سلامتی. اور اس طرح سے یہوہ نسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جھنڈا, ہمارا بینر جس کے پاس ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تو خداوند کا نام جو ہے وہ پاک مانا جائے. اب کس طرح سے وہ پاک مانا جائے؟ کیا ہم خداوند کو پاک کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزو, خداوند بذات خود جو ہیں وہ ایک پاک ہستی ہیں. اور بائبل مقدس اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہمارے جو پالنے والا, سنبھالنے والا, ہمارا جو کریٹر خدا ہے وہ پاک ہے. اور پاک کا جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ خداوند جو ہے وہ کریٹر ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں. یعنی خداوند کو وہ مخلوق سے سیپریٹ کرنے کے لیے یہ جو یسوع مسیح نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تیرا نام پاک مانا جائے, وہ مخلوق سے سیپریٹ ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہم جو ہیں ہم اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں, ہم اس کے لوگ ہیں. لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا کریئٹر ہے. اب خداوند جو ہے وہ اپنے قول و فعل میں جو ہے وہ پاک ہے. اور خداوند جو ہے اس کی یہ پاکیزگی جو ہے وہ ہم یسوع مسیح کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے انسانی روپ لیا اور وہ یسوع مسیح کی صورت میں اس دنیا میں آئے تو یسوع مسیح نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے. تو وہ پاکیزگی جو ہے وہ ازل سے ہے, وہ ابا تک رہے گی. اور جب خدا نے انسانی روپ لیا تب بھی وہ پاکیزگی جو ہے وہ برقرار رہی. اور خداوند نے ہمیں بھی یہ کہا کہ جس طرح سے میں پاک ہوں تم بھی اسی طرح سے پاک بنو. جیسا کہ میں نے کہا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پاک ہے. خداوند جو بھی کلام کرتا ہے وہ پاک ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک بنے تو کیا ہم جو کلام کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی گواہی تو نہیں دیتے؟ کیا ہم جو کلام کرتے ہیں وہ گالیوں سے پاک ہے؟ کیا ہمارا کلام جو ہے, ہماری گفتار جو ہے وہ جھوٹ سے پاک ہے؟ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پاک ہے. جب بھی خداوند اپنے منہ سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے وہ پاک ہے. اور پھر لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں, حبقوق نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں پاک ہیں. کیا ہماری آنکھیں پاک ہیں؟ کیا جب ہماری آنکھیں کوئی چیز دیکھتی ہیں تو فوری طور پہ اس کا لالچ تو نہیں کرتی؟ ہمارے ذہن کے اندر کسی چیز کو دیکھنے کے بعد وہ लालच तो नहीं समा जाता, हम लालच तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम किस तरह से अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी पकीजगी को, जिस तरह से खुदा की आंख पाक है उस तरह से हम भी अपनी आंखें पाक रखते हैं। मेरे अजीजों, और उसके बाद यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब तीसरी आयत में लिखा है, और जो कोई उससे उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक रखता है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद से उम्मीद रखते हैं, खुदावंद से हम अपनी दुआएं मांगते हैं, खुदावंद से हम अपनी शख्सी और रूहानी और जिस्मानी ताकत मांगते हैं, तो क्या हम अपनी जो उम्मीद है, हमारी जो उम्मीद है खुदावंद यीशु मसीह, क्या हम अपने आप को वैसा ही पाक रखते हैं, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे क्या हम वैसे ही पाक हैं? क्योंकि हम जब दुआ करते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए, क्या हम अपने कामों से उसके पाक नाम को ताज़ीम देते हैं या नहीं? क्या हमारी आंखें, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम किसी औरत को बुरी नजर से भी देखोगे तो आप अपने दिल में उसके साथ जना कर चुके, क्या हमारी आंख जो है वो उसी तरह से पाक है जिस तरह से कि हमारा खुदा बाप पाक है, और जिस तरह से कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हम भी उसकी मानद बने। मेरे जीजो, ये दुआए रबानी जो है ये खुदावन ने एक मॉडल के तौर पे हमें सिखाई है कि हम किस तरह से अपनी दुआ जो है वो खुदावन के हजूर में करें। और इसकी जो दूसरी दरखास्त है जिस पे मैंने आज थोड़े से आपके साथ शेयर किया है, वो ये है कि तेरा नाम पाक माना जाए, और खुदा के पाक नाम को हम किस तरह से तज़ीम देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हमें उसके हुक्मों को मानना है, और इसी तरह से हम उसके नाम को ताज़ीम दे सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें।